हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अग्रेषु चातुर्होत्रम्। दूरदर्शनं देवय दक्षरात्मकम् कन्दांसि यस्य प्रतिबर्हिरोमसे आज्यं दृशुकं धृषिकासुहोत्रम्। मन दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देवय दक्षरात्मकम् कन्दांसि यस्य त्वशिरोमसे आज्यं दृशीत्वं धृषु चातुर्होत्रम्। त्वं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देवयदध्वरात्मकम् चन्दांसि यस्य त्वचि बहिरोमसु आज्यं दृशि त्वं दृशु चातुर्होत्रम्। दुर्दर्शनं देवयदध्वरात्मकम् चन्दांसि यस्य त्वचि बहिरोमसु आज्यं दृशि त्वं दृशु चातुर्होत्रम्। रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देवयदध्वरात्मकम् चन्दांसि यस्य त्वचि बहिरोमसु आज्यं दृशि त्वं दृशु चातुर्होत्रम्। रूपं स्वरूप तव तुम्हारा एतत् यः ननु लेशं दुष्कृत आत्मनां दुष्टात्मानं च दुर्दर्शनं वेत्पानं कर्तुं एव हेतुः यः सः अध्वर आत्मकम यज्ञ संपन्न करने के कारण पूजनीय अन्नदान से गायत्री तथा अन्य छंद यस्य जिसके त्वचि त्वचा का स्पर्श बर्हिः कुछ नामक पवित्र भाग रोम से शरीर के रोए आज्यम भी दृषि आँखों में तो भी अंघ्रिषु चारों पावों पर चातुः होत्रम चार प्रकार के सकाम कर्म। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, दुष्टों की एक श्रेणी है जिसे भगवद गीता में वेदवादी कहा गया है, अर्थात जो वेदों के कट्टर अनुयायी हैं। वे भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते, पूज्य सुपर के रूप में भगवान के अवतार के विषय में तो वे भगवान के अवतार भाग और यह भी कहा गया है वेदों की कट्टर अनुयायियों से जो भगवान के गुप्त वेदों का अपहास करते हैं, श्रीमद्भागवत को जान लेना चाहिए कि ऐसे अवतार साक्षात वेदों के हैं। भगवान अराह की चर्चा उनकी आंखें तथा उनके शरीर के रोम रूपों का वर्णन यहाँ पर वेदों के विभिन्न अंगों के रूप में हुआ है। वे वैदिक मंत्रों को विशेष होया गाय के मंत्र के ओम ज्ञान सुबराम तत्व ज्ञानांजन शराय वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साक्षजातं सकलविनाशानन्दं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिगुणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगमललितां श्रीरूपाम्बिकां नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णज्येष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वती देवी भैरवाणी कृपाकृपितानां पादमुखे वैष्णवे नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमपदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यमहे श्रीकृष्णपरिणाशं दीनबन्धो जगत्पते लोकेशोपिकाकान्तराकाशभानुदेवी प्रणमाये। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रियद्वैतराधे श्रीवासादिदैवभक्तिवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कंध के 13वें अध्याय में जिसका शीर्षक है अराह भगवान का सातत्य, इसमें सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर चुके हैं कि किस प्रकार से भगवान का जन्म अद्भुत था। जन्म करने समय के जन्म एवं योग के तत्व ऐसी मांग होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि उनके जन्म और उनके कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, और जो व्यक्ति इन तथ्यों के तत्वतः ज्ञान लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो भगवान के विविध अवतार हैं जो अनेक रूप धारण करते हैं, जो सनातन रूप हैं, और इस भौतिक सृष्टि में सतत होते हैं अवतार के रूप में, जो अवतीर्ण होते हैं वो अवतार हैं। साधारणतः हरेक अवतार ब्रह्मा जी को एक दिवस में एक बार प्रकट होते हैं, परंतु कभी कभी एक दिन में दो बार भी आ सकते हैं। भगवान के ऊपर कोई बाधा तो नहीं लगाई जा सकती कि भगवान के ऊपर एक बार ही आने के हैं किसी विशेष, परंतु साधारणतः वो एक बार ही। वरह देव दो बार, पहली बार आए वो पहले नंबर पर। जैसा कि आप जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 नए होते हैं और उसे दो मनुओं के बीच में जो समय की अवधि होती है उसको मन्वंतर कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिवस में ऐसे 14 मनु होते हैं या 14 मन्वंतर होते हैं, और ब्रह्मा जी की रात भी उतनी ही लंबी होती है। तो हम अब सातवें मनु के समय में हैं, सातवें मन्वंतर में हैं, और हर एक मन्वंतर के अंदर 70 से अधिक चतुर्युग होते हैं। जैसे ये कलयुग, उसके पहले द्वापर, उसके पहले त्रेता, उसके पहले सत्य। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कल ये चक्र चलते रहता है, और 1000 बार जब चलता है तो ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक मन्वंतर में 70 से थोड़े ज्यादा चतुर्युग हैं। हम 28वें चतुर्युग में इस समय हैं, सातवें मन्वंतर में, जो वैवस्वत मनु का मन्वंतर है। वैवस्वत मनु विवस्वान सूर्यदेव के पुत्र हैं। तो पहले मनु का नाम था, जैसे हम पढ़ चुके हैं इसी अध्याय में, स्वयंभुव मनु। जो स्वयंभू से उत्पन्न हुए वो है स्वयंभुव। ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू, क्योंकि उनके जन्म के लिए कोई भौतिक सृष्टि के माता पिता नहीं थे, वो स्वयं भगवान से ही उत्पन्न हुए। और किस तरह से उत्पन्न हुए? भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी वहीं निवास करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी का और एक नाम है कमलासन। तो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं, अनेक पुत्र चतुष्कुमार आदि हैं, लेकिन उनमें से एक है स्वयं भुव मनु, जो स्वयं भू से जन्म लिए हैं। वैसे ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में एक बहुत विशाल प्रलय होता है, जिसमें सारे ब्रह्मांड का संहार होता है, परंतु ब्रह्मा जी के हर एक दिवस के अंत में भी एक छोटा सा संहार होता है, जिसमें केवल ऊपरी लोक जो है ब्रह्मांड के वो रह जाते हैं, जैसे कि महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि। लेकिन जो निम्न श्रेणी के लोक हैं वो सब डूब जाते हैं जल में, और कोई उन लोकों में रह नहीं सकता है। तो ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में ऐसे संहार होता है, प्रलय होता है, और पुनः जब ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हो जाती है और नया दिवस आरंभ होता है, तो पुनः सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी को करना पड़ता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के दिवस एक के बाद एक, एक के बाद एक बीतते जाते हैं। ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि 100 वर्ष की है, और अब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं। 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये पहला दिन है ब्रह्मा जी का, जिसमें हम अब हैं। और इस पहले दिन के अंदर जो 14 मनु होते हैं उनमें से सातवें मन्वंतर में हम हैं। तो इस दिवस में, ब्रह्मा जी के इस दिवस में, जब ब्रह्मा जी जागे और उन्होंने सोचा कि कैसे सृष्टि की रचना करनी है, प्रलय के बाद जो नाश हुआ है उसको पुनः ठीक करना है, तो उन्होंने अनेक पुत्रों को जन्म दिया जिनको प्रजापति कहते हैं। इनका कार्य होता है प्रजा की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी थोड़े पुत्रों को उत्पन्न तो करते ही हैं, लेकिन थोड़े बहुत पुत्रों को उत्पन्न करने से क्या होगा, सारे ब्रह्मांड को भराना है जो। तो फिर इन पुत्रों के द्वारा जो प्रजापति हैं, संतान की उत्पत्ति होती है, और ऐसे सारा संसार जो है
भर जाता है जीवों से, 84 लाख योनियों में। स्वयंभुव मनु की पत्नी थी शतरूपा, दोनों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। और इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि शतरूपा के साथ स्वयंभुव मनु ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे विनती की कि हमें आदेश दीजिए, हम क्या सेवा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि संतान की उत्पत्ति करना और सारे ब्रह्मांड में ठीक ठाक धर्म के अनुसार राज्य को चलाना। उस समय स्वयंभुव मनु ने देखा कि पृथ्वी गर्भोदक सागर में गिर चुकी थी, तो उन्होंने निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि कृपया पृथ्वी लोक को आप ऊपर उठाइए जो इस समय गर्भोदक सागर में गिर पड़ी है। तो ब्रह्मा जी बड़े गहरे सोच में पड़ गए कि ये तो बहुत बड़ा कार्य है, ये कैसे किया जा सकता है। और जब ब्रह्मा जी ऐसे गहरे विचार में थे तो उनके नसिकाओं से, इनको नसिकों के अंदर से एक बहुत ही अद्भुत विचित्र एक शूकर प्रकट हुआ, अंगुष्ठ परिमाणकम, जिनकी लंबाई केवल अंगुष्ठ के अग्रभाग की थी इतनी, जहां तक ब्रह्मा जी की तुलना है, तो शरीर की तुलना। और बाहर निकलते निकलते बड़े शिला या बड़े पत्थर का आकार ने बड़े उनकी लंबाई या चौड़ाई स्वीकार कर ली। और ब्रह्मा जी तो देखते रह गए, साथ साथ जितने भी अन्य ऋषि मुनि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए। और फिर उन्होंने अनुमान लगाया सही तरह से कि ये तो स्वयं भगवान ही हैं, भगवान विष्णु के ही रूप हैं। वराहदेव जोर जोर से गरजने लगे और अंतरिक्ष में उड़ते गए, अंततः गर्भोदक सागर की ओर चले, बड़े जोर से अंदर प्रवेश किया उन्होंने गर्भोदक सागर में। पूरे सागर को मानो उन्होंने दो भागों में काट दिया और मानो कि अपनी ऊंची उर्मियों से, अपने लहरों से गर्भोदक सागर प्रार्थना कर रही है कृपा कीजिए। और वहां पर भगवान के वराह रूप ने पृथ्वी को खोज निकाला और अपने दंष्ट्रों पर स्थित करके, पुनः जल के ऊपर स्थित करके फिर वो अपने धाम में लौट के चले गए। लौटते लौटते अपने शरीर को हिलाया और जो जल उनके शरीर से निकला वो अनेक लोकों में फैल गया और गंगा जल के बराबर ही है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान के चरण कमलों से जो जल उत्पन्न होता है वो तो गंगा है, परंतु भगवान के चरण कमल और उनके शरीर के किसी अन्य भाग में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो भी गंगा जल था। और साथ साथ में भगवान के जो रोम है वो भी गिर पड़े अनेक लोगों के ऊपर। और ये है कुश घास, जिसको यहाँ बरही शब्द से, बरही शब्द का प्रयोग किया गया है कुश के लिए, और विशेष करके ये स्वयंभुव मनु के राजधानी में पड़ा। और उस राजधानी का नाम क्या था? बरहिष्मति, जहां बरही गिर पड़ी, कुश घास। तो संसार में जितने भी कुश घास देखते हैं, जो पवित्र घास माने जाते हैं, वो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं और बड़े पूजनीय हैं, अर्चा पूजा आदि में इनका महत्व है। तो इस प्रकार से शुकर रूप में भगवान यहां प्रकट हुए। वैसे मैत्री मुनि ने तो वर्णन किया है कि उन्होंने हिरण्याक्ष का भी वध कर दिया, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात बताते हैं कि इस समय जब भगवान प्रकट हुए वराह के रूप में, उन्होंने केवल पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठाया और ऊपर स्थित कर दिया। इस समय हिरण्याक्ष का जन्म भी नहीं हुआ था। तो दूसरी बार जब वराहदेव प्रकट हुए छठे मनु के समय, छठे मनमंत्र में, उस समय मनु का नाम था चाक्षु, चक्षु। तो चक्षु ये मनु थे, छठे मनु थे, तो उनके मनमंत्र का नाम है चाक्षुष मनमंत्र। तो चाक्षुष मन्वंतर में दोबारा भगवान वराहदेव के रूप में प्रकट हुए और इस समय भी उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया जो कि हिरण्याक्ष के उग्र कर्मों के कारण नीचे गिर पड़ी थी। और फिर जब भगवान ने पृथ्वी लोक को उतारा उठाया तो उस समय हिरण्याक्ष को क्रोध आया और फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो पहली बार पृथ्वी लोक गिर पड़ी थी गर्भोदक सागर में, क्योंकि प्रलय हो चुका था ब्रह्मा जी के रात्रि के समय, इसलिए भगवान को शुकर रूप लेके उद्धार कराना पड़ा। दूसरी बार जब चाक्षुष मन्वंतर में वराह भगवान ने पृथ्वी लोक को उठाया तो वो इसलिए उठाया कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी लोक को नीचे भेज दिया था। वैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असुरों का काम ऐसे ही होता है, वो जहां भी जाते हैं संतुलन को बिगाड़ डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं गाम आविश्य च भूतानि धारयाम यहम ओजसा। वो कहते हैं कि जितने भी ग्रह है, जितने भी लोक यहां पर हैं जो तैर रहे हैं अंतरिक्ष में, वो सब मेरे ओजस शक्ति के कारण तैर रहे हैं। परंतु हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट व्यक्ति आते हैं और वो तरह तरह के उग्र काम करते हैं। हिरण्याक्ष का मतलब है जो सोने के पीछे घूमता फिरता था, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो सोने के लिए जो खुदाई करते रहता था उससे इतना असंतुलन हो गया पृथ्वी लोक में कि पृथ्वी अपनी कक्षा से गिर पड़ी गर्भोदक सागर में। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो असुर होते हैं, उनके कार्य ही ऐसे होते हैं, वो ऐसे उग्र कर्म करते हैं। प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः, जिससे जगत का क्षय होता है, जिससे जगत का अहित होता है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, ऐसी उनकी नास्तिक दृष्टि होती है कि ये सारी सृष्टि काम के ऊपर ही आधारित है और इसलिए नष्ट आत्मनः, वो अपने आप को भी नाश करते हैं, सारे सृष्टि का विनाश करते हैं। अल्प बुद्धयः, उनकी बुद्धि नहीं रहती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण असुरों का वर्णन करते हैं और हिरण्याक्ष जो हैं उनके बड़े भाई के साथ आदर्श उदाहरण हैं इस चीज के। तो हिरण्याक्ष के उग्र कर्मों के कारण पृथ्वी दोबारा गिर पड़ी ब्रह्मा जी के दिवस के अंदर ही और दोबारा वराहदेव को उनका उद्धार करना पड़ा पृथ्वी लोक का। तो पहली बार जब वराहदेव प्रकट हुए तो वो सफेद रंग के थे, श्वेत वराह, इसलिए ब्रह्मा जी के उस दिवस को श्वेत वराह कल्प कहते हैं, उस मन्वंतर को, विशेष करके इस दिवस में भी। और छठे मन्वंतर में जब वो प्रकट हुए तो वो लाल रंग के थे। भले सफेद रंग के हों या लाल रंग के हों, जो भी हों, वो हैं भगवान, हर अवस्था में वो भगवान ही रहते हैं, उनकी भगवत्ता में कोई अंतर नहीं होता। वराहदेव एक शुकर नहीं है, वो तो स्वयं भगवान ही हैं, केवल भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेते हैं। और जब वो भिन्न रूप का धारण करते हैं तो अज्ञानी लोग सोचते हैं कि ये भी एक शूकर हैं या एक मनुष्य हैं इत्यादि। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करती हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यम नृशिशु यादहसु तद अत्यंत विडंबनम। वो प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, आपके कार्यों से वास्तव में सभी लोग मोहित हो जाते हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि आप अज हैं, आपका जन्म नहीं होता, फिर भी आप जन्म लेते हैं। आप वैसे, आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी आप काम करते हैं, आप कार्य करते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुर आत्मनः। और इतना ही नहीं, आप जन्म कहां लेते हैं और किस तरह के कार्य करते हैं। तिर्यन मतलब पशु, पशु योनि में प्रकट होकर पशुओं की तरह काम करते हैं। नृ मनुष्य योनि में कभी कभी प्रकट होकर मनुष्यों के समान कार्य करते हैं, मानो कि आप कोई साधारण मनुष्य ही हैं। ऋषि कभी ऋषि समाज में प्रकट होते हैं, जैसे नारायण ऋषि बने, और ऋषियों को काम है तपस्या करना, तो आप भी ऋषियों की तरह काम करते हैं। यादहसु आप जलचर प्राणियों के समाज में प्रकट होते हैं, जैसे मत्स्य अवतार के समय हुआ, और जलचर प्राणी तो पानी में तैरते हैं, तो आप भी तैर रहे थे। तो इस प्रकार से आपके बड़े विचित्र अद्भुत लीलाएं हैं, आपके जन्म आपके कर्म वास्तव में बहुत ही मोह में डालने वाली चीजें हैं, बड़ी विडंबना है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। तद अत्यंत विडंबनम। इस तरह से वराहदेव के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए कि ये कोई शुकर नहीं है, ये साक्षात भगवान ही है। किंतु क्योंकि उनको ऐसे कार्य करना था जो एक शुकर के लिए उपयुक्त है, इसलिए उन्होंने शुकर का रूप धारण किया। एक नीच स्थान में जाकर उन्हें पृथ्वी लोक को उठाना था, तो शुकर का रूप धारण किया और अपने नसिकों से सूंघते सूंघते गए, जैसे एक शुकर कार्य करता है। जो पशु होते हैं वो अपने नाक से चीजों को पहचानते हैं, गुण धर्म जो है किसी वस्तु का वो अपने नाक से पहचानते हैं। आपने देखा होगा पशु जो पहले किसी चीज को सूंघते हैं, तो वराहदेव भी ऐसे सूंघते सूंघते गए और पृथ्वी का उद्धार कर दिया। तो ये साक्षात भगवान है और यहां भी प्रकट हुए हैं। तात्पर्य में अंत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान वराह की त्वचा, उनकी आंखें तथा उनके शरीर के रोम कूपों का वर्णन यहां पर वेदों के विभिन्न अंगों के रूप में हुआ है। अतएव वे वैदिक मंत्रों के, विशेषतया गायत्री मंत्र के साक्षात रूप हैं। तो भगवान वराहदेव साक्षात वेदों के, वेद मंत्रों के रूप हैं। यह निष्कर्ष है वेदों का ही। शास्त्र में बताया जाता है कि वेद ये भगवान नारायण के सांस से उत्पन्न होते हैं। जब भगवान के सांस को ब्रह्मा जी ने अंदर सांस ले लिया, तो उनके अंदर से वो वेद निकले। जब भगवान बाहर, ब्रह्मा जी बाहर सांस लेने लगे, तो वराहदेव निकले। आप समझ रहे हैं इस बात को? नारायण भगवान के सांस से वेद निकले, उस सांस को ब्रह्मा जी ने अंदर लिया, ब्रह्मा जी भी सांस ले रहे हैं ना। तो जब भगवान ने बाहर सांस लिया, उसी सांस को ब्रह्मा जी ने अंदर लिया, अर्थात वेदों को ग्रहण किया उन्होंने। और जब ब्रह्मा जी ने बाहर सांस लिया, तो वही वेद बाहर निकले और इस समय वराहदेव के रूप में निकले। तो ऐसे आचार्यों ने टीका की है, बतलाया है कि कैसे हमें जान लेना चाहिए कि वराहदेव वो साक्षात वेदों के ही रूप हैं, मूर्तिमान स्वरूप हैं, गायत्री मंत्र के, छंदांसी अन्य मंत्रों के वो मूर्तिमान स्वरूप हैं। इसके बारे में एक सुंदर लीला है चैतन्य भागवत में। चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने भक्ति की लीलाओं को प्रकट किया, तो कभी कभी भाव विभोर होकर वो तरह तरह से व्यवहार करते थे, जिससे सारे भक्त आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक बार वो अपने आप को अक्रूर के भाव में लाकर अपने भक्तों से कहते कि हे नंद बाबा, चलो हमारे साथ, हम मथुरा जाएं कंस के धनुर्यज्ञ के लिए। कभी अपने आप को भक्त समझ के शोकग्रस्त, शोक व्यक्त करते, कभी कभी अपने भगवत स्वरूप को ध्यान में रख के कहते कि वो नाड़ा कहाँ है, वो वृद्ध नाड़ा, नाड़ा मतलब अद्वैत आचार्य, जिनके कारण मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। तो ऐसे तरह तरह के भाव प्रकट करते थे। एक बार उन्होंने शास्त्रों का श्रवण करते समय वराहदेव का वर्णन सुना, तो ये श्लोक सुनने से तुरंत उनके मन में वराहदेव का भाव जागृत हो उठा। और वहां से उठ पड़े और तेजी से मुरारी गुप्त के घर की ओर दौड़ते हुए चले गए। मुरारी गुप्त तो उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे, वैसे मुरारी गुप्त तो साक्षात हनुमान जी हैं। तो उनके घर में सीधा प्रवेश किया, शुकर शुकर कह के। और जब अंदर प्रवेश किया, शुकर शुकर चिल्ला रहे थे, गरज रहे थे, गर्जना कर रहे थे जोर जोर से। तो मुरारी गुप्त अंदर थे, बड़े स्तंभित अवस्था में इधर उधर देख रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं, कहां शुकर, किस शुकर की बात कर रहे हैं निमाय पंडित। उनको कुछ समझ में नहीं आया, सीधे निमाय पंडित चले गए घर के अंदर जो मंदिर था उसमें। वहां पर उन्होंने जल पात्र देखा कमंडलू के समान, और उसको देखकर तुरंत भाव विभोर होकर उन्होंने वराह देव का रूप धारण कर लिया, यहां तक कि उनके चार खुर भी प्रकट हो गए, और अपने दंष्ट्रों से उन्होंने उस जल पात्र को उठाया, दंष्ट्रों के ऊपर ही रखा और मुरारी गुप्त से कहा, मेरी स्तुति करो। बोलो तो मुरारी गुप्ता तो बेचारे स्तब्ध हो गए, निर्वचन हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ समझ में नहीं पा रहे थे, क्या अचानक हो गया, शुकर शुकर कह दिए और निमाय पंडित ने स्वयं वराहदेव का अवतार धारण कर लिया, रूप धारण कर लिया। तो वो देखते रह गए। तो निमाय पंडित जो वराहदेव के रूप में थे, उन्होंने कहा, डरो नहीं, बोलो मेरी स्तुति करो। तो फिर मुरारी गुप्त कहने लगे, मेरा क्या अधिकार है प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए, मैं इस योग्य नहीं हूं, आपकी स्तुति करना मेरे बस की बात नहीं है, आपका जो ऐश्वर्य है, आपके जो गुण हैं, आपका गौरव है, आप ये सब चीजें केवल आप ही जान सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। अनंत देव स्वयं अपने सहस्र वदनों से अनादि काल से आपका गुणगान करते आए हैं, और वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि अभी तक वो इस गुणगान के अंत तक नहीं पहुंचे हैं, और उन्हें पता नहीं है कि कब वो अंत तक पहुंचेंगे। जो वेद शास्त्र हैं, जिनके नियमों का पालन हर एक व्यक्ति करता है, ये वेद शास्त्र भी आपको नहीं जानते हैं। आप सदैव आपके दिव्य आनंद में स्थित रहते हैं, तो भले वेद भी आपको कैसे जान सकते हैं। तो जब अनंत शेष वेद आदि आपको नहीं जानते, आपको नहीं जान पाते, तो भले हम कैसे आपको जान पाएंगे, आपकी स्तुति हम कैसे कर पाएंगे, हमारा कोई अधिकार नहीं है ये स्तुति करने के लिए। केवल आप ही आपकी स्तुति, स्वयं की स्तुति कर सकते हैं, आप ही आपके गुणों को जान सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप कृपा करें, वो व्यक्ति आपकी कृपा से आपके गुणों का वर्णन कर सकता है, आपके ऐश्वर्यों को जान सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए इन बातों को सुनकर, और वो कहने लगे कि हे मुरारी, देखो तुम बिल्कुल डरना नहीं, और ये जान लो कि मैं यज्ञमय हूं, मैं यज्ञमय स्वरूप हूं, मैं यज्ञ का ही रूप हूं, यज्ञ और मुझ में कोई अंतर नहीं है, वेद और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो दुष्ट हैं, और इनका वर्णन यहां प्रभुपाद जी इस श्लोक के, आज के भागवत के श्लोक के तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, उन लोगों का जो कि वेदों को तो मानते हैं, कट्टर रूप से पालन करते हैं तथा कथित रूप से, परंतु भगवान के दिव्य रूप को नहीं मानते हैं, भगवान के रूप को ही नकारते हैं। तो फिर आगे वहां निमाय पंडित जो वराह रूप में थे, वो कहने लगे कि ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा कोई दिव्य शरीर ही नहीं है, मेरे हाथ नहीं हैं, पांव नहीं हैं, मेरी आंखें नहीं हैं, ये ऐसा कहते हैं। श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत में अपनी टीका में कहते हैं कि श्वेताश्वतर उपनिषद, इसमें कहा गया है अपाणि पादो जवनो गृहीत पश्यत्य चक्षुः स श्रीणोति अकर्णः। ऐसे उपनिषदों में और अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि जो परब्रह्म हैं उनके कोई दिव्य, उनके कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, फिर भी वो यज्ञों के फलों को स्वीकार करते हैं। अपाणि पादो, पाणि मतलब हाथ, पाद मतलब चरण, अपाणि मतलब उनके हाथ पैर नहीं है, फिर भी जवनो गृहीता, फिर भी यज्ञ के फल को स्वीकार करते हैं। पश्यति, वो देखते हैं, हालांकि अचक्षु हो, उनके कोई आंखें नहीं है। वो सुनते हैं, श्रृणोति, हालांकि वो अकर्ण हैं, उनके कोई कान नहीं है। तो महाप्रभु कहने लगे कि ऐसे जो लोग हैं, जो इन शास्त्रों के इन श्लोकों को पढ़ते हैं, वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जो सरासर गलत है कि मेरा कोई रूप ही नहीं है, मेरे कोई हाथ पैर कान आंख है ही नहीं। परंतु इसका तात्पर्य ये है वास्तव में कि मेरा शरीर है, मेरे कान नाक आंखें सब हैं, परंतु ये सब दिव्य हैं। परंतु इस सत्य को ये लोग नहीं जानते हैं। और वहां काशी में एक दुष्ट है जिसका नाम है प्रकाश आनंद, वो तो मेरे शरीर का खंड खंड कर रहा है, उसने तो मेरे शरीर को ही काट डाला है, और वो कहता है कि मेरा कोई शरीर ही नहीं है। अब मुरारी तुम कहो, मेरा जो शरीर है वो सर्व यज्ञमय है और पूरी तरह से पवित्र है, यहां तक कि ब्रह्मा जी शिव जी भी इस स्पर्श के माध्यम से पवित्र हो जाते हैं, मेरे दर्शन के माध्यम से पवित्र हो जाते हैं। और ये व्यक्ति कहता है कि मेरा कोई रूप नहीं है, मेरे आंखें नहीं है, कान नहीं है, तो इसलिए मैं वेदों के प्रति क्रोध प्रकट कर रहा हूं। वैसे उनका क्रोध वेदों के प्रति नहीं था, भगवान का क्रोध उन व्यक्तियों के प्रति था जो वेदों के जो स्पष्ट वचन हैं उनको तोड़ मोड़ करके कोई गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि वेदों को वचनों को अज्ञ रूढ़ी से कई लोग लेते हैं। अज्ञ रूढ़ी अर्थात वेद अपने वचनों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो दुष्ट हैं, जो भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भगवान निराकार है, भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं, शरीर नहीं इत्यादि। तो ये अज्ञानी लोगों के लिए है। परंतु जो विद्वत रूढ़ी है, जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो इन वचनों को सही दृष्टि से समझ सकते हैं। और अपाणि पादो जवनो गृहीता जैसे श्लोकों का सही अर्थ निकालते हैं, और वो सही अर्थ ये है कि भगवान के भौतिक हाथ नहीं हैं, उनके भौतिक पैर नहीं हैं, उनके भौतिक आंखें और कान नहीं हैं, पर उनको उनका शरीर सच्चिद आनंद है, चिन्मय है, दिव्य है। तो फिर आगे महाप्रभु कहने लगे कि हे मुरारी, अब सुनो, एक बहुत गुही बात, एक रहस्यमय बात तुम्हें मैं बता रहा हूं, और वो ये है कि मैं ही वो यज्ञमय वराह हूं जिसने आके पृथ्वी लोक का उद्धार किया था बहुत समय पहले। अब मैं प्रकट हुआ हूं हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन का उद्घाटन करने के लिए। हमें कोई अंतर नहीं है ये जान लेना, और मैं स्वयं यज्ञ का मूर्तिमान रूप हूं। जितने भी समस्त वेदों के छंद हैं, मंत्र हैं, उन्हीं का मूर्तिमान स्वरूप मैं हूं। इस प्रकार से वराहदेव ने मुरारी गुप्त को अपना दर्शन दिया। महाप्रभु ने वराहदेव को स्वीकार का रूप स्वीकार करके ऐसे दर्शन दिया और ऐसे अच्छे उपदेश भी दिए। उधर मुरारी गुप्त बस देखते रह गए, सुनते रह गए आश्चर्यचकित होकर। और फिर भगवान ने अपना वराह रूप फिर से ओझल कर दिया, अदृश्य कर दिया, और फिर भगवान बड़े शांत हो गए, निमाय पंडित के रूप में आ गए। तो इससे हम बहुत महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, बल्कि आज के तात्पर्य के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त लीला है, क्योंकि दोनों बातें जो मुख्य बातें इस तात्पर्य में लिखी गई हैं, दोनों इस लीला के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहली बात कि भगवान का रूप सर्वयज्ञमय है, वेदों से अभिन्न है, वो वेदों के ही और छंदों के ही मूर्तिमान स्वरूप हैं साक्षात। और दूसरी बात कि ऐसे दुष्ट लोग हैं जो कहते हैं कि वो वेदों को मानते हैं, कट्टरता से पालन करते हैं वेदों के उपदेशों का, परंतु अज्ञ रूढ़ी के कारण वो वेदों के वचनों को गलत समझते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान का शरीर ही नहीं है और ये सब माया है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो भौतिक पदार्थों से शरीर ग्रहण करते हैं, ऐसे गलत निष्कर्ष पर लोग पहुंचते हैं। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे गुरु परंपरा में आके हमारे महान आचार्यों के सिद्धांतों को जो विद्वत रूढ़ी है हम सुन पा रहे हैं और वेदों के सही सिद्धांतों को निष्कर्षों को हम ग्रहण कर पा रहे हैं। और इन गलत सही सिद्धांतों को ग्रहण करने से हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। और विशेष करके यज्ञ रूप भगवान का इस कलयुग में है हरिनाम का रूप, जिसको स्वीकार करके हम हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका है? हाँ जी,
हरे कृष्ण महाराज। धन्यवाद महाराज। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को, इसका कोई अन्य कारण शास्त्र में बताया गया है कि हिरण्याक्ष क्यों पृथ्वी को ले गए, गर्भदुख सागर में डुबो दिए, ऐसा कोई कारण?
हाँ, जैसे हमने बताया पहले, वो सोने के लिए खुदाई कर रहे थे सब जगह, खान खान के काम होते हैं सोने के खान निकालने के लिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में अनेक जगह में कि ये जो ग्रह हैं, जो लोक हैं, पृथ्वी आदि, उनको भगवान ने अंतरिक्ष में तैरा दिया है और वो इसलिए तैर रहे हैं कि उनकी आंतरिक जो एक उस तरह से उनको बनाया हुआ है कि वो आसानी से तैर पाते हैं, भगवान ओजस शक्ति भी प्रदान करते हैं। परंतु जब ऐसे उग्र कर्म होते हैं, जैसे बहुत गहरे खान आदि खुदाई करते हैं, जैसे आजकल कर रहे हैं तेल के लिए, सोने के लिए, तरह तरह के धातुओं के लिए, बहुत ज़्यादा हम सीमा के बाहर जब करते हैं, तो इसमें जो आंतरिक एक तत्व है पृथ्वी का, वो बदल जाता है, जिसके कारण पृथ्वी अपनी कक्षा में हिल जाती है। और जब ये भी सीमा के बाहर हो जाती है तो पृथ्वी अपनी कक्षा से गिर के गर्भोदक सागर में जाती है। तो हिरण्याक्ष ऐसे कर रहा था उग्र कर्म, जिसके कारण पृथ्वी माता गिर पड़ी गर्भोदक सागर में। तो आजकल जो चल रहा है, ये तेल के लिए खुदाई हो रही है, तरह तरह के खान भी बन रहे हैं, सब उग्र कर्म है, जिससे पृथ्वी असंतुलित अवस्था में आती है, जिसके कारण ये सारे निसर्ग में, प्रकृति में कितना कुछ गड़बड़ हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, मौसम भी बदलते जा रहा है। ये तो पर्यावरण के की तो बहुत बड़ी समस्या है आजकल, ये सब उग्र कर्मों के कारण है। दूसरा कोई प्रश्न? आज पीछे माइक दीजिएगा। माइक कहाँ है?
हेलो।
हाँ जी,
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण
महाराज। स्वामी जी, क्षमा करें, आपने दो प्रलय का जिक्र किया। एक तो वो प्रलय जो ब्रह्मा जी के एक दिन में होती है और दूसरी प्रलय जो उनका जीवन समाप्त हो जाता है, जिसको महाप्रलय कहते हैं। कृपा करके इन दोनों का अंतर बताने की कृपा।
इन दोनों के बारे में?
हाँ, इनमें अंतर क्या है?
अंत क्या है,
अंतर अंतर
अंतर क्या है? जब ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में जो महाप्रलय होता है उसमें सारा सारे ब्रह्मांड का विनाश होता है और फिर सारे ब्रह्मांड जो हैं वो महाविष्णु के रोम छिद्रों में, रोम कूपों में प्रवेश करते हैं पुनः जब महाविष्णु अंदर सांस लेते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में प्रलय होता है तो उस समय ऊपरी जो लोक हैं ब्रह्मांड के अंदर उनका नाश नहीं होता है, केवल निम्न श्रेणी के लोक हैं पृथ्वी आदि से नीचे वो सब उनका नाश होता है। कभी कभी स्वर्ग लोक का भी नाश होता है, स्वर्ग आदि में जहां देवतागण रहते हैं उनका भी नाश होता है। देवतागण तो बदलते रहते हैं हर मनवंतर में, तो ब्रह्मा जी के एक दिवस में 7-14 बार बदलते हैं देवतागण। तो इस मनवंतर में जो इंद्र हैं वो पिछले मनवंतर में कोई और थे, उसके पिछले मनवंतर में और कोई इंद्र थे। इंद्र आदि ये पद रह जाते हैं लेकिन जो व्यक्ति हैं उस पद को ग्रहण करने वाले वो बदलते रहते हैं 14 बार ब्रह्मा जी के दिन में। लेकिन ब्रह्मा जी के दिन के अंत में ऊपरी लोक रह जाते हैं, उनका नाश नहीं होता है। और ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में स्वयं ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और कोई प्रश्न, अंतिम प्रश्न? हाँ जी, पीछे माइक दीजिएगा।
जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्ण
प्रभु। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर महाराज जी, कि भगवान का एक रूप होता है तो उनका असली रूप कैसा होता है?
आप मंदिर से आए हैं अभी? आए हैं ना अभी? अभी बस वही असली रूप है भगवान।
ले मूर्ति तो बहुत अलग अलग रहते हैं प्रभु जी।
हाँ,
लेकिन उनका तो असली रूप एक ही रहता ना?
यही असली रूप है, ये मूल रूप है जो आपने मंदिर में देखा, जो बलराम जी के साथ में खड़े हैं, जो राधा रानी के साथ में खड़े हैं, वही भगवान का असली रूप है, मूल रूप है। और उस मूल रूप से भगवान के भिन्न 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 अनेक रूप भी उत्पन्न होते हैं, जैसे वराह रूप, नरसिंह रूप आदि। ठीक है,
शुक्रिया।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौड़ प्रेमानंदे।